आस्था की बाजी। आस्था के माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो आहन के पास आकर हैरान होते हुए बोली, क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई ऐसी बात है जो आप हमसे बताना चाहते हैं? अब आगे। तभी आहन ने सिर दबाया और गहरी सांस ली और जवाब में कहा, भाभी, जब मुझे रॉकी के बारे में जानकारी मिली थी तब मैंने उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था और उसी को फॉलो करके ही मैं डार्क विला तक पहुंचा था। उसी के साथ मुझे ये भी पता चल चुका था कि रॉकी ब्लैक डेविल के कहले पर किसी लड़की को बेताबी से ढूंढ रहा है। ब्लैक डेविल जो चाहता है रॉकी वही करता है। भाभी, आपको नहीं पता, ब्लैक डेविल एक बहुत बड़ा वुमनाइजर है। जो भी लड़की उसको पसंद आती है वो उसे पाने के लिए बेताब हो जाता है और जब तक वो उस लड़की को हासिल नहीं कर लेता तब तक वो बेचैन रहता है और शायद इसी वजह वो आपको ढूंढ रहा है। अब जैसे ही आहान ने अपना मन कठोर करते हुए आस्था को ये जवाब दिया तो ये सुनकर सब लोगों के चेहरे गुस्से से भर चुके थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल हुए जा रही थीं। गुस्सा उनकी आंखों से शॉलों की तरह फूट रहा था। वहीं अबीर ने खतरनाक तरीके से अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। वो गुस्से से तमतमा उठा, फिर लगभग चीखते हुए बोला, मैं उस ब्लैक डेविल की जान अपने हाथों से लूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बटरफ्लाई के बारे में ऐसी घटिया बातें सोचने की? ये कहकर अबीर का तन बदन गुस्से से कांपने लगा था। तभी ध्रुव आहन के पास आया और उसने कन्फ्यूज आवाज में उससे पूछा, आहन यार, तूने अब तक ये नहीं बताया, आखिर तुझे रॉकी, ब्लैक डेविल और राजवीर जिंदल की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? ध्रुव के मुंह से ये सवाल सुनकर आहन का चेहरा हल्का सा बदला। फिर उसने गहरी सांस ली और नॉर्मली बोला, वो एक्चुअली मेरी कॉलेज की दोस्त टीना ने ग्रुप में कुछ अपडेट किया था। ध्रुव ने आहन की इस बात पर आंखें घुमाई और फिर चौंकते हुए बोला, अपडेट किया था मतलब? और उसने कौन से ग्रुप में तुम्हें अपडेट किया था? इस पर आहन साफ शब्दों में ध्रुव को समझाया, तो उस ग्रुप में ऐड नहीं है, जिस कॉलेज ग्रुप में न्यू ट्रस्टी की फोटो ऐड होती है उसी ग्रुप में मैंने राजवीर की फोटो देखी थी और उसी फोटो में मैंने रॉकी को राजवीर के साथ देखा था। इस शहर में आते ही राजवीर जिंदल ने एक बड़ी अमाउंट हमारे कॉलेज में डोनेट की थी। आहन के इस जवाब ने वहां मौजूद हर एक शख्स को तगड़ा झटका दिया था, यहां तक कि आस्था को भी। सब ये सोचकर हैरत में पड़ गए थे। उन्होंने राजवीर को हर जगह खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और जब मिला तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इस शहर में आते ही अपनी पॉजिटिव इमेज बनानी शुरू कर देगा। वहीं आस्था की आंखों में आशा की चमक दिखाई दे रही थी और तभी वो कुछ सोचते हुए फट से बोली, एक मिनट, आप लोगों की बातों से हम एक बात समझ चुके हैं, ये हमारे पास अच्छा मौका है। ब्लैक डेविल से मिलने के बहाने हम उसके डार्क विला में जा सकते हैं और वहां से हम वो एंटीडोट लेकर आ सकते हैं। आस्था का सुझाव सुनकर सभी ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। उस समय सभी की शक्ल ऐसी थी मानो जैसे जहर का घोट निगल रहे हों। उनके दिलो दिमाग में इमोशन का एक जबरदस्त तूफान मचा हुआ था। इस पर आकाश ने आस्था को बीच में टोक दिया, लेकिन आस्था, वहां पर राजवीर जिंदल भी होगा और वो तुम्हें अच्छे से जानता है। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी अबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और दबी हुई आवाज में बोला, राजवीर जिंदल हर रोज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक विला से बाहर रहता है। आज जब हमने राजवीर जिंदल के निकलने के बाद उसका चुपके से पीछा किया तब हमें पता चला कि वो पूरे 3 घंटे अपनी मरी हुई बीवी की कब्र पर गुजारता है और उसके साथ में उसके काफी सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। अबीर के शब्द सुनते ही सबके एक्सप्रेशन बदल गए। आस्था अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उसने बारी बारी से सबको गंभीरता से देखा और जल्दी से अपनी बात समझाने की कोशिश की, हमें ये रिस्क लेना ही होगा। हम ठीक राजवीर जिंदल के जाने के बाद उस विला एंटर में करेंगे और आप लोग बाहर से हम पर नजर रखोगे। फिर हम किसी बहाने से ब्लैक डेविल के पास जाकर उसका ध्यान भटकाएंगे और वो एंटीडोट लेकर वापस बाहर आ जाएंगे। अबीर को आस्था की आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों सुनाई दिए और उसका मन थोड़ी देर के लिए बेचैन हो गया और वो परेशान होकर बोला, लेकिन आस्था, मेरा मतलब है बटरफ्लाई, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें वहां जाने की इजाजत देंगे अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो? अबीर के सवाल ने आस्था को एक पल के लिए हैरान और परेशान कर दिया था, लेकिन अगले ही पल वो अपना मन कठोर करते हुए बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अबीर जी, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, अगर मैं वहां जाऊंगी तो पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी। आस्था की बातों में इतना आत्मविश्वास देखकर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई उसे रोक सके। अगले ही पल आहान ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया और घबराई आवाज में बोला, मैं जानता हूँ भाभी, आप सब ठीक कर सकती हैं, लेकिन प्लीज खुद को कोई चोट मत पहुँचने देना। अगर अरमान भाई की यादें वापस आ गईं तो आपके बिना जीना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। आहान की आवाज में चिंता सुनकर आस्था हल्के से मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया का दिल आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसने संजना से सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को कहा और सीधा सिंघानिया मेंशन जाने का रुख किया। संजना उसे मीटिंग करने के बहाने से रोकना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और संजना को उसकी कदमों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई दी। अरमान सीधा सिंघानिया मेंशन आ पहुंचा और इधर उधर आस्था को ढूंढने लगा। सिंघानिया मेंशन का हॉल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था।
वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और आस्था भी अभी तक सिंघानिया मेंशन में नहीं पहुंची थी। नानी माँ को भी इस बात के बारे में कुछ खबर नहीं थी। अब अरमान को अकेला देखकर नानी माँ ने कैजुअली पूछा, अरे बेटवा आस्था को साथ लेकर नहीं आए? नानी माँ का सवाल अरमान के दिमाग में तीर की तरह लगा था। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे। उसने नानी माँ से रूखे अंदाज में पूछा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या वो लड़की अभी तक घर वापस नहीं आई है? जैसे ही ये शब्द अरमान के मुंह से निकले वैसे ही बानी माँ थोड़ा सा परेशान हो गई। फौरन ही उनके कदम जहाँ थे वहीं पर जमसे गए। उसी वक्त राधिका, रश्मि और दादाजी भी वहाँ आ गए। दादाजी ने अरमान के चेहरे पर एक गहरी नजर डालते हुए पूछा, बेटा आस्था बेटिया तो तुम्हारे साथ ही ऑफिस गई थी ना? हमें कोई अंदाजा नहीं कि आस्था बेटिया घर पर वापस आई है या नहीं, और अभी तक आकाश, सुमित और बाकी सब भी घर पर वापस नहीं आए हैं। ऊपर से वो अभी भी नहीं आया। जैसे ही अरमान ने दादाजी की बात सुनी वैसे ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक मिनट के लिए ठहर सी गई थी। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था जैसे आस्था पर फिर से किसी ने हमला तो नहीं कर दिया, क्योंकि आज आस्था पर अटैक हुआ था इसलिए अरमान की शक की सुई वहीं आकर अटक गई थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था, मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था, ये सारी मेरी ही गलती है, अब मैं उस एंग्री बर्ड को कहाँ ढूंढूं? ठीक उसी वक्त एंजल, जो कि मारिया और रौनक के साथ थी, वो वहां आई और हल्की स्माइल के साथ बोली, आप लोग परेशान मत होइए, आस्था अविनाश और अबीर जी के साथ है, वो सब अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही एंजल ने ये कहा वैसे ही सब लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अविनाश ने एंजल को फोन करके पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो सब आस्था के साथ है और अभी थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं। जैसे ही अरमान ने ये लाइन सुनी आस्था अबीर के साथ है, वैसे ही उसका चेहरा कठोर हो गया।
फौरन ही अरमान के चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा नजर आने लगा और उसके दिल की जलन और नफरत और बढ़ गई। इसी बीच आकाश, सुमित अलग तरीके से वहां आए, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो लोग अलग अलग तरीके से एंट्री लेंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। वहीं ध्रुव, आहान और अविनाश एक साथ आते हैं और लास्ट में अबीर और आस्था वहां एक साथ पहुंचते हैं। क्योंकि टाइगर डाक विला की निगरानी कर रहा था इसलिए वो वहां उनके साथ नहीं आया था। जैसे ही आस्था वहां आई वैसे ही अरमान ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आस्था ने उस वक्त पार्टी वेयर कपड़े पहने हुए थे। ये नोटिस करते ही अरमान का माथा झनझना उठा। फौरन उसके मन में शक ने डेरा जना दिया। उसने आईब्राउ चढ़ाई और एकदम से सोचा, शायद ये लड़की इस अबीर सिंह राठौर के साथ डेट पर गई थी और ये उसके साथ पार्टी करके आ रही है। इस वक्त अरमान का तन बदन गुस्से में जल रहा था। उन लोगों ने सिंगल एंट्री का प्लान बनाया था लेकिन फिर भी वो अरमान के गुस्से भरी नजरों से नहीं बच सके। अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा हुआ था। वो फौरन आस्था के पास आया और उसके कंधे को पकड़ते हुए एकदम से बोला, तो तुम्हारा दिल ऑफिस में इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि तुम मिस्टर अबीर सिंह राठौर के साथ पार्टी करना चाहती थी, है ना? इसी वजह से तुम्हारा ध्यान ऑफिस के काम में नहीं लग रहा था। ये बोलकर उसने गुस्से से आस्था का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए कमरे में ले गया। अरमान को इतना भड़का हुआ देखकर एक पल के लिए सभी घर वाले शॉक हो गए और अगले ही पल अचानक सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। तभी नानी माँ ने एकदम से अबीर की तरफ देखा और एक्साइटेड होकर कहा, अरे वाह बिटवा, हमें नहीं पता था कि तुमने दामाद जी को चुढ़ाने का इतना अच्छा प्लान बनाया है। वाकई में दामाद जी पर इसका काफी अच्छा असर हुआ है। ये कहकर नानी माँ ने अबीर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई जादूगर हो। वहीं अबीर चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा हो, यहाँ हुआ तो हुआ क्या। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया, अगर बिना कुछ किए भी आस्था का भला हो रहा है तो अच्छा ही है। थोड़ी देर बाद नानी माँ सबके लिए चाय लेकर आईं, जो वहाँ के माहौल को हल्का और फ्रेश बना रही थी। दूसरी ओर अरमान गुस्से से आस्था को कमरे में लेकर गया और उस पर गुस्से से बरस पड़ा। अच्छा, मेरी बीवी होकर तुम इस तरह किसी और के साथ ऐसे कैसे जा सकती हो? तुमने ये कैसे सोच भी कैसे लिया कि तुम अबीर सिंह राठौर के साथ इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती हो? क्या तुम में शर्म और हया नाम की कोई चीज़ है या नहीं? इससे पहले अरमान आस्था को और भला बुरा कहता, उससे पहले अचानक आस्था ने उसे गले से लगा लिया और उसके कान के पास जाकर मदहोशी से फुसफुसाई, अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ 24 घंटे रह सकते हैं, हम हर एक पल आपके करीब रह सकते हैं, आपके होते हुए हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है। अब आस्था का ऐसा व्यवहार देखकर एक पल के लिए अरमान की नजरें साफ तौर पर ठिठक गई और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वो आस्था पर और ज्यादा चिढ़ गया, इसलिए वो उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, मुझे ऐसे चिपकने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ऐसी लड़कियां एकदम जहर लगती हैं, इसलिए मुझसे दूर रहकर बात किया करो। इस पर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला, उसके होंठों पर एक शरारती स्माइल खेल रही थी। उसने अरमान की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मिस्टर सिंघानिया, अभी थोड़ी देर पहले जब हम मिस्टर राठौर के साथ थे तब आपको इस बात का बुरा लग रहा था कि हम उनके साथ थे, और जब हम आपके साथ हैं तब भी आप इतना बुरा मान रहे हैं, अब आप ही बताइए आप चाहते क्या हैं? अरमान को खुद से दूरी बनाते देख आस्था के दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी हुई। उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा,
मिस्टर सिंघानिया, आपको हमारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर आपकी यादें चली गई हैं, आपको हमारे बारे में कुछ याद नहीं है कि आप हमें किस हद तक चाहते थे, तो इसमें हमारा क्या दोष है? अब तो ये वही बात हो गई ना, आप अपनी बीवी को खुद नहीं घुमाओगे और ना ही किसी को भी घुमाने दोगे। ये बोलकर आस्था ने मुंह फुला लिया। अरमान आस्था के अजीब बिहेवियर को देखकर सोच में पड़ गया। अगर मैं इस लड़की के आसपास कुछ देर और रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। इसलिए अरमान बिना कुछ कहे आस्था को घूरते हुए वहां से सीधे जिम रूम की ओर में चला गया।